प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
श्रोताओं नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जैनेन्द्र। भाषा की दुनिया भी कितनी अजीब है और कितनी आकर्षक है। दरअसल अगर आप सोचना शुरू करें तो हमारे और आपका रिश्ता भी तो भाषा के जरिए ही बनता है। भाषा, बोलियां, ये हमें जोड़ती हैं। और ये जो हमारे पास विरासत है भाषाओं की और बोलियों की, ये कोई 100-200 साल या हजार साल नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारी भाषाएं तो ऐसी हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। अपने देश में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं और मुझे तो लगता है कि भारत देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश है भाषाओं और बोलियों के लिहाज से। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में खासतौर पर इसका जिक्र किया था, भाषाओं को लेकर उन्होंने बात की थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के रूप में मना रहा है, उसे इस रूप में घोषित किया है। लेकिन भाषा बोलियों को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन खैर इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अलग अलग मुद्दे हैं, विषय हैं और बहुत सारे इसके पहलू हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं इस विषय को लेकर, यानी भाषाओं और बोलियों को लेकर, प्रोफेसर डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी से, जो कि वर्तमान में एमिटी सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक स्टडीज गुरुग्राम में प्रोफेसर और हेड हैं, प्रख्यात भाषाविद हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, बहुत कुछ हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं बताता चलूंगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में।
नमस्कार।
मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप मैथिली भी जानते हैं, बांग्ला भी जानते नहीं बल्कि लिखते हैं, पढ़ते हैं इनमें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब कितनी सारी भाषाएं, पहले तो ये बताएं कि इतनी सारी भाषाएं आपने सीखी कैसे?
तो अलग अलग जगहों में रहे
जी,
और संस्कृत कॉलेज का छात्र रहा हूँ तो संस्कृत पाली तो पढ़ना ही पड़ा।
अच्छा।
भाषा विज्ञान के साथ साथ, और चूंकि मैंने गुजरात में 5 साल बिताया, हैदराबाद में 14 साल बिताया, मैसूर में 9 साल बिताया, और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में भी करीब 7-8 साल था
जी, वहाँ प्रो वाइस चांसलर थे
जी, वहाँ भी था
जी,
तो इसलिए भाषाएं अपने आप आती चली गई।
पर कुछ न कुछ आकर्षण तो रहा होगा मन में शुरू से।
आकर्षण मूलतः कविता है और नाटक दोनों है।
हाँ।
क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में अगर आप जाते हैं तो बहुत सहज रूप से आपको समझ में आ जाती है बात, और आप उसको हृदयंगम भी कर लेते हैं और बोलना भी शुरू कर देते हैं।
ये जो भाषा की जर्नी है सर, उसकी यात्रा है, अब आम है तो ये लालच तो है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, क्या है इसकी अहमियत, इसकी भूमिका, इसकी शुरुआत या अस्तित्व में ये चीजें कैसे आई, क्या आवश्यकता थी?
मुश्किल ये है कि आप झूठ भी बोले तो भाषा में ही बोले, और आप महान साहित्य का अध्ययन करें वो भी भाषा में
जी,
फिल्म देखें वो भी भाषा में, आप कुछ भी करें, बाजार जाएं, मोल मोलाई करें तो भी भाषा में, तो भाषा को बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो रात में सपना भी देख रहे हैं तो भाषा में ही देखेंगे आप
जी,
साइलेंट सपना तो होता नहीं। तो इसलिए भाषा की अहमियत तो बहुत है हर मनुष्य के जीवन में, और बगैर भाषा का कुछ सोच ही नहीं सकते आप। एक तरफ से देखें विज्ञान की भाषा भी अलग भाषा है, ठीक है वो गणित है, लेकिन गणित भी तो भाषा ही है।
बिल्कुल।
तो इसलिए आप जो भी करना चाहेंगे भाषा के बगैर नहीं कर पाएंगे, उसको साथ में लेके ही आपको करना पड़ेगा।
निश्चित रूप से। और जो ये बातचीत हम कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ, वो भी यही भाषा ही है, उसका जरिया है, लेकिन उसको गढ़ा कैसे जाता है, बनती कैसे है? मतलब मुझे ये उत्सुकता हुई जब इस विषय के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था, इतनी हजारों बोलियां भारत में, मेरा ख्याल 1500-1600 के आसपास ऐसी बोलियां भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो भारत का संविधान जिन्हें मान्यता प्रदान करता है, लेकिन ये कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू होती होगी, कैसे बनी होगी, आपने तो इसका अध्ययन किया होगा।
हमारे अध्ययन में भाषा विज्ञान में
जी
एक जमाना था जबकि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल था, अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल नहीं है।
अच्छा।
इसलिए नहीं है कि आर्कियोलॉजिकली या हिस्टोरिकली इसका कोई एविडेंस आपके पास तो होता नहीं है कि किसी भाषा की शुरुआत कैसी हुई। होता है उन भाषाओं का जो कि आर्टिफिशियली बना हो, कुछ अंतरराष्ट्रीय भाषा जैसे एस्पेरांतो है, जो कि आपस में बोलचाल की संभावना बढ़ाने के लिए लोगों ने बनाया है, आर्टिफिशियली बनाया है, कृत्रिम रूप से बनाया है। तो इसका तो आपको पता चलता है कि 100-150 साल पहले किसी ने सोचा, कुछ लोगों ने सोचा, मिलके उन्होंने बनाया। लेकिन जो स्वाभाविक प्राकृतिक भाषाएं हैं, तमिल हो चाहे बंगला हो चाहे हिंदी हो, इसके इतिहासकार तो होते हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत प्राचीन है, जितना पूर्व आप चले जाते हैं आपके एविडेंस मिलना बहुत कम होता जाता है। तो इसलिए बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताना कठिन है कि इस तरह से हमने, शिव ने नृत्य किया और डमरू से ध्वनियां आई और ध्वनियों से भाषा बना,
उसका व्याकरण
माइथोलॉजी है, लेकिन ठीक है, लेकिन इस तरह से एग्जैक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस बताना मुश्किल है।
लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदी जो है वो स्वाभाविक रूप से बनी हुई भाषा है, तो इसका मतलब कि व्याकरण उसका फिर बाद में उसको बनाया गया?
देखिए, व्याकरण विद जो होते हैं किसी भाषा का, वो पीछे पीछे भागते हैं भाषा के। भाषा पहले बन जाती है, क्योंकि भाषा तो बिल्कुल जमीन पर बनती है और बाजार में पलती है और
लोग
की जबान पे चलती है, घर में सजा के रखते हैं भाषा को। लेकिन व्याकरण लिखने वाले जो है वो बहुत पीछे पीछे भागते हैं कि ठीक है, हम बोलचाल की भाषा का व्याकरण बनाए, लिखित भाषा का व्याकरण बनाए, जो औपचारिक भाषाएं हैं उसका व्याकरण बनाए। तो व्याकरण का अलग अलग उद्देश्य होता है, वो बाद में बनता है। लेकिन व्याकरणिक संरचना जो भाषा में है वो नो नेचुरल चीज है।
तो ऐसे ही संस्कृत के साथ भी
सब कुछ बिल्कुल।
अच्छा,
अब संस्कृत में देखिए, संस्कृत को जिन लोगों ने संस्कृत बनाया है, मतलब संस्कृत तो एक अवधारणा थी कि हमारे बीच में ऐसी कोई संयोग की भाषा हो, ऐसा कोई ज्ञान की भाषा हो जो कि जिसमें कि सब लोग लिख सके या बोल सके। गौर कीजिएगा कि उस जमाने में भी, चाहे ख्रिस्ट पूर्व मान लीजिए 2000 साल पहले भी चले जाएं, तो भी बहुत सारी भाषाएं थी और अलग अलग जगह की, अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषाएं, उपभाषाएं थी। लेकिन संस्कृत की सुविधा ये थी कि दक्षिण का कोई विद्वान हो वो भी संस्कृत में लिख सकता है, अफगानिस्तान से, कंदहार से कोई आ रहा है वो भी संस्कृत का व्याकरण रचना कर रहा है उसका, कोई उत्तर पूर्वी अंचल से आता है या पहाड़ से, हिमालय से आता है वो भी संस्कृत में बोलता है। तो ये सुविधा थी संस्कृत की। संस्कृत वॉज बेसिकली वॉट इंग्लिश वॉज डूइंग। आज अंग्रेजी की जो सुविधा है लोगों में, या हिंदी में भी जो सुविधाएं हैं पूरे भारत को जोड़ने में, तो वो सुविधा संस्कृत में एक जमाने में थी।
लेकिन संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि उसका जो, चाहे व्याकरण हो चाहे उसका शिल्प है जो भी, वो सारी भाषाओं से बहुत समृद्ध और बहुत वैज्ञानिक है।
ये तो होता ही है। होता ही। आप संस्कृत के मॉडल को समझने के लिए इस समय आप अंग्रेजी को अगर देख लें, तो अंग्रेजी की शब्द संपदा जो है वो आधे से ज्यादा तो अन्य भाषाओं से आई है, तो ये तो संस्कृत में भी हुआ है
जी।
और ध्वनियां भी बाहर से आई है संस्कृत में, शब्द तो आई है बाहर से, क्योंकि लिखने वाले बोलने वाले जहां जहां के हैं वो अपनी जो सुंदर चीजें हैं वो संस्कृत में ले जाते रहे।
अच्छा, संस्कृत और कन्नड़ा और तमिल, ये तीन भाषाओं को कहते हैं कि ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इसका क्या आधार है?
क्लासिकल लैंग्वेजेस ये तीन भाषाएं नहीं है इस समय। टेक्निकली अगर आप भारत सरकार की टेक्निकी डिसीजन को लें, तो एक कमिटी है क्लासिकल लैंग्वेजेस की कमिटी।
अच्छा,
जिसकी शुरुआत में ही दो लोगों को रखा गया था, भद्री राजू कृष्णमूर्ति थे जो फॉर्मर वाइस चांसलर थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का और दुनिया के बहुत जाने माने भाषा विज्ञानी थे, और मुझे रखा गया था।
अच्छा,
तो शुरू में तो डिमांड केवल तमिल के लिए आया था।
अच्छा,
तो तमिल का जो केस था उसको हम लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा, समझा, और हम लोगों ने एक पहले क्राइटेरिया बनाया कि कौन से ऐसी क्राइटेरिया हो जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए फिट है। अब इस क्राइटेरिया को फिर हमने जितने हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट वर्ल्ड में हैं उनसे हमने डिस्कस करके बनाया है, तो तब तमिल को हमने घोषणा कर दी कि ये क्लासिकल लैंग्वेज। तो तमिल वालों ने फिर आके कहा कि ये फायदा क्या है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस है। आप लोगों ने संस्कृत को डिक्लेयर नहीं किया, केवल तमिल को डिक्लेयर किया, तो ये तो उचित नहीं है।
अच्छा,
फिर प्रधानमंत्री के दफ्तर से भी आया कि नहीं, अब संस्कृत को भी कंसिडर किया। संस्कृत को क्या कंसिडर करें, संस्कृत तो है ही क्लासिकल भाषा, तो उसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया
जी।
और उसके बाद में डिमांड आया कि तमिल और तेलुगु, तेलुगु और कन्नड़ के लिए। और ये बहुत जोर शोर से डिमांड आया। अब समस्या ये है कि इनमें उतनी पुरानी एविडेंसेस नहीं थे जितना कि तमिल में बहुत केयरफुली प्रिजर्व था, लेकिन फिर भी एपिग्राफी का एविडेंस लिया और बहुत सारे एविडेंसेस लिए, लेकिन अंततोगत्वा तेलुगु और कन्नड़ को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जब ये दिया गया तो फिर मलयालम वाले आ गए और मराठी वाले आ गए और उड़िया वाले आ गए, तो अब ये सभी भाषाएं जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस इन भाषाओं को डिक्लेयर।
दरअसल इसमें इतना समृद्ध इसका इतिहास भी है, इन भाषाओं का साहित्य इतना समृद्ध है और परंपराएं, लोक जीवन इतना कुछ है, और ये सचमुच मुझे तो सारी भाषाएं लगता है कि उसी तरह की है, उसी तरह का आकर्षण, शास्त्रीयता का जो रंग है पोटे उसमें नजर आता है। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन एक गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। दरअसल गीत भले कुछ आजकल की फिल्मों से लिए गए हों, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भाषा की बातचीत हम कर रहे हैं, बोलियों की बातचीत कर रहे हैं, वो गीतों के माध्यम से भी हमारे श्रोताओं तक
बहुभाषिकता
जी
उसकी झलक आ जाए।
तो एक गीत है जाबरा गीत, उसे कहते हैं, शाहरुख खान की फिल्म है। उस गीत में 11 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, तो अब श्रोता सुने और ये समझे कि कौन कौन सी भाषाएं उसमें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन गीत बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा उनको, और फिर लौटकर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
करूं ट्विटर पे, टैग करूं फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल
श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बातचीत कर रहे हैं जो भारतीय भाषाएं, बोलियां, उसका अद्भुत संसार और बहुत ही आकर्षक और समृद्ध विरासत जिसके पास है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी से। उदय नारायण सिंह जी जो है अमिटी सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक स्टडीज गुरुग्राम में आजकल प्रोफेसर और हेड है, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस यानी CIAL मैसूर में है, उसके निदेशक भी रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। नचिकेता आपका उपनाम है मेरा ख्याल है।
जी जी, मैथिली में नचिकेता।
तो आप बांग्ला में भी लिखते हैं?
बंगला में, लेकिन बंगला में अपने नाम से उदय नारायण सिंह हो इस नाम।
अच्छा, सिंह हो। और मैथिली में आपके कई सारे काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। ये जो जानना चाहूंगा, क्योंकि इंडिजिनस लैंग्वेजेस की हम खास तौर पर आज बातचीत करना चाहते हैं आपसे, इंडिजिनस या स्वदेशी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस रूप में हम इसको समझना चाहिए हमें?
समस्या ये है कि अगर किसी को इंडिजिनस घोषित करना चाहे, देशज भाषा, कौन सी भाषा देशज भाषा है? क्योंकि बहुत सारी भाषाएं जो आज देशज भाषा है, चाहे बंगला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, टेक्निकली ये बाहर से आई है।
अच्छा।
कुछ हजार साल पहले जब आर्य की,
अच्छा, उस हिसाब से,
उस हिसाब से बाहर की भाषाएं हैं। तो इस रूप से देखें तो देशज भाषा के रूप में या स्वदेशी भाषा के रूप में केवल रह जाएंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं।
अच्छा।
जो मुंडा भाषाएं हैं, जिनको हम मुंडा भी कहते हैं, क्योंकि टिबेटो बर्मन भी आप लें तो बहुत सारी टिबेटो बर्मन ऐसी हैं जो कि विद इन कोट विदेश से आई है।
जी।
तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि अंडमान निकोबर की जो भाषाएं हैं, जारवा से लेकर दूसरी भाषाएं हैं, ये भी कहीं अफ्रीका से आई हैं। तो अब इस रूप से अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली इसकी संज्ञा को लेकर चलें तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिजिनस लैंग्वेजेस का मतलब यही है, कॉन्सेप्ट यूनेस्को का ये है कि एक देश में जो भाषाएं कंटेम्प्रेरी और रिसेंट हिस्ट्री में बाहर से आई हैं, जैसे अंग्रेजी का आगमन हुआ भारत में, पहले तो थी नहीं, हमारे पास बहुत कुछ विदेश से आए हैं, लेकिन बाकी जो चीजें यहां से कुछ हजार साल से, सैकड़ों साल से बोली जाने वाली भाषा है, वो हम उसको हम इंडिजिनस भाषा मानेंगे।
तो जो हमारे देश में तमाम ऐसे समुदाय हैं, वर्ग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जो अपनी स्थानीय बोलियों का जो इस्तेमाल करते हैं, भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, आई कहीं से भी हो, लेकिन वो कम से कम अब देशज भाषा के तौर पर हम उसको मान सकते हैं। तो इन भाषाओं के समक्ष मुझे लगता है इन दिनों काफी चर्चा भी हो रही है, किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं?
चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इनको टिका के रखना, इनको बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग में रखना यही बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई टोटो बोलने वाला है, अब टोटो के बोलने वाले कुल 1200 लोग पश्चिम बंगाल में
जी।
अब टोटो वालों के लिए यह समस्या है कि या हम टोटो में गीत संगीत लिखें, गाएं, अपनी हर रिचुअल्स में उसका प्रयोग करें, सब ठीक है, लेकिन बाहर हम मादारीपाड़ा से बाहर जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए तो हमको बंगला जानना ही पड़ेगा या नेपाली जानना ही पड़ेगा। तो ये चैलेंज उनका हो जाता है कि अगर हमको कामकाज के लिए, बाकी चीजों की सुविधा के लिए अगर हमको दूसरी भाषाओं में बातचीत करनी ही है तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, बाद के जो प्रजन्म के लोग हैं, वो क्या उस भाषा को, मातृभाषा को अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। दूसरी ये कि मान लीजिए उस भाषा में, हम तो ये कहते हैं कि यूनेस्को की तरफ से भी कहा जाता है कि मातृभाषा में शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा होती है। ठीक है, मातृभाषा में आप सिखाना चाहते हैं। भारत के संदर्भ में 96% लोग जिन भाषाओं को बोलते हैं वो 4% भाषाएं हैं। जितनी भाषाएं भारत में हैं उसकी केवल 4% भाषाएं बोलने वाले 96% है। मतलब ये जो 22 भाषाएं आप देख रहे हैं संविधान में, इनके बोलने वाले 96% लोग
जी,
लेकिन ये तो मात्र 4% भाषाएं हैं। बाकी जो 96% भाषा है वो क्या होगा, उनके बोलने वालों की संख्या 4% है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो कि 5000, 10000, 15000, 20000 लोग बोलते हैं
जी।
तो उनमें एक ये भी होता है कि नए बच्चों का जन्म होना या नए स्पीकर्स को मेंटेन कर पाना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए।
दरअसल कई बार मुझे ये भी लगता है कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, अब अगर आजकल बहुत ज्यादा जोर होता है अंग्रेजी पर, अंग्रेजी अगर नहीं स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेज पाए तो हिंदी स्कूल में या ऐसे स्कूल में जहाँ हिंदी में, जो प्राइमरी लेवल की कम से कम 5वीं क्लास तक की शिक्षा जो है वो तो उसकी संभावना तो रहती है। मुझे लगता है यूनेस्को की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दिया था और उन्होंने ये बात हमेशा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी ये बात कही थी बार बार और लिखा भी उन्होंने अपने सत्य के प्रयोग में, कि अगर हम बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का अवसर नहीं देते हैं तो हम उनके साथ मतलब आत्मघात जैसी स्थिति हम पैदा कर रहे हैं, वो उस बच्चे के लिए भी है, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी है। तो लेकिन वो कहीं धरातल पर चीज नजर नहीं आती।
धरातल पर इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेजी के माध्यम से शुरू से अगर हम सिखाएंगे तो बहुत पक्का हो जाएगा अंग्रेजी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
नहीं होता ऐसा।
ज्यादातर केस में देखा गया कि जो अंग्रेजी आज बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं और अंग्रेजी का प्रयोग जो अपनी अपनी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे लेखन में हो, वो करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआती शिक्षा अपनी मातृभाषा में हुई है, इतना स्ट्रांग है अपनी मातृभाषा में कि उसकी जो फ्लेवर है वो अंग्रेजी में ले आते हैं, इसलिए एक नए तरह की अंग्रेजी लिख सकते हैं।
बिल्कुल। लेकिन अगर देखिए, मान लीजिए 6ठी क्लास से भी अगर अंग्रेजी में पढ़ाई पढ़ाया जाए या उस माध्यम में पढ़ाया जाए, तब भी भाषा का ज्ञान तो अच्छी तरह हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं की है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, अपना सारा काम करते हैं, लेकिन उसका ये लाभ मिलता है कि कम से कम अगर 5वीं क्लास तक बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी बोली में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल में, तो वो कम से कम उनको ज्ञान तो हो जाता है, उसका अभ्यास भी हो जाता है उसका।
बिल्कुल।
तो भविष्य में हमें ज्यादा चिंता ना करनी पड़ती। अब स्थिति है कि कोई बहुत सारी बोलियां ऐसी कि इसके 200 लोग बोलने वाले, कोई 400, और वो भी खतरे में वो चीजें पड़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी किया था खासतौर पर, और उन्होंने मन की बात में एक बहुत सकारात्मक एक उदाहरण दिया था जिससे थोड़ी उम्मीद बनती है। आपने तो उसको सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। मैं श्रोताओं को वो अंश सुनवा देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का, ताकि उत्तराखंड की उस भाषा का और उस भाषा को बचाने के लिए, बोली को बचाने के लिए किए गए प्रयास से हम सब एक बार फिर से परिचित हों और शायद उसी राह पर चलकर आगे कुछ दिशा मिल सके।
हो सकता है
जी। आइए सुनते हैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। पिछले दिनों मुझे उत्तराखंड के धार चुला की कहानी पढ़ने को मिली, मुझे काफी संतोष मिला। इस कहानी से पता चलता है कि किस प्रकार लोग अपनी भाषाओं, उसे बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग समुदाय के काफी लोग रहते हैं। इनकी आपसी बोलचाल की भाषा रंगलो है। ये लोग इस बात को सोचकर अत्यंत दुखी हो जाते थे कि इनकी भाषा बोलने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन इन सब ने अपनी भाषा को बचाने का संकल्प ले लिया। देखते ही देखते इस मिशन में रंग समुदाय के लोग जुटते चले गए। आप हैरान हो जाएंगे, इस समुदाय के लोगों की संख्या गिनती भर की है। मोटा मोटा अंदाज कर सकते हैं शायद 10,000 हो, लेकिन रंग भाषा को बचाने के लिए हर कोई जुट गया। चाहे 84 साल के बुजुर्ग दीवान सिंह हो या 22 वर्ष की युवा वैशाली गर्ब्याल, प्रोफेसर हो या व्यापारी, हर कोई हर संभव कोशिश में लग गया। इस मिशन में सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया, कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सैकड़ों लोगों को उस पर भी जोड़ा गया। इस भाषा की कोई लिपि नहीं है, सिर्फ बोलचाल में ही एक प्रकार से इसका चलन है। ऐसे में लोग कहानियां, कविताएं और गाने पोस्ट करने लगे, एक दूसरे की भाषा ठीक करने लगे। एक प्रकार से व्हाट्सएप ही क्लासरूम बन गया, जहां हर कोई शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है। रंगलो भाषा को संरक्षित करने का इस प्रयास में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, पत्रिका निकाली जा रही है और इसमें सामाजिक संस्थाओं की भी मदद मिल रही है। साथियों, खास बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 यानी इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस घोषित किया है, यानी उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है। यदि आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो आज से ही अपनी मातृभाषा या बोली का खुद उपयोग करें, परिवार को, समाज को प्रेरित करें।
तो डॉक्टर साहब, आपने सुना पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग समुदाय के लोग, जिन्होंने बहुत संख्या नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी भाषा, अपनी बोली को बचाने के लिए कम से कम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर नए ढंग से कोशिशें शुरू की हैं। वो चीज़ें दरअसल, बोली या भाषा बचती है तो पूरी संस्कृति बची रहती, मुझे लगता है।
बिल्कुल।
और आप तो संस्कृति और भाषा दोनों के रिश्ते को बहुत गहरे से समझते हैं। इस पर हम बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन एक हम गीत उसी तरह का जैसा हमने पहले जिक्र किया था वो गीत मैं श्रोताओं को सुनवा दूं। ये गीत जो है वो बिल्कुल राजस्थानी रंग का गीत है, पर हिंदी फिल्म का गीत है। रंगीलो मारो ढोलना, बहुत ही खूबसूरत गीत है। राजस्थान का आपको रंग भी और उसकी संस्कृति का और उसकी भाषा बोली का रंग भी आप महसूस कर पाएंगे इस गीत के माध्यम से। आइए सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं।
Oh!
श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी से, प्रख्यात भाषाविद। डॉक्टर साहब, भारत की भाषाओं के संदर्भ में तो हम बातचीत और आपसे करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे याद आया कि आप 2009 में वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी, मेरा ख्याल है वो इंटरक्टिव एटलस के नाम से, जो पूरी दुनिया की भाषाओं को लेकर एक सर्वे किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था, और उसमें 30 लोगों की टीम थी जिसमें मेरा ख्याल है एशिया से या दक्षिण एशिया से कम सिर्फ आप थे। हमारे लिए गर्व की बात है। उस रिपोर्ट के बारे में कुछ उसके अंश मैंने कहीं पढ़े भी, और उसमें लिखा गया कि अपनी बोलियों को और भाषाओं को भूलने में भारत नंबर वन है, पहले स्थान पर है। तो ये पढ़कर मुझे अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं लगा, लेकिन आप बताएं उस रिपोर्ट की और उस सर्वे की अहमियत क्या थी और क्या कुछ उसमें मिला पाया गया।
जी, असल में ये यूनेस्को एटलस एक बार प्रयास इसके पहले हुआ था,
अच्छा
5-7 साल उससे पहले, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे उस समय काम हुआ। 2006-07 से हमने काम शुरू किया और हम 30 लोग थे जिसमें की कार्टोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स थे, लिंग्विस्ट तो थे ही और सोशियोलॉजिस्ट थे। तो समस्या ये थी कि इसको बहुत ज्यादा फैलाएं तो काम होता नहीं है। तो हमारे टीम लीडर बीबीसी के क्रिस मुसली थे,
अच्छा,
तो इनवे रेडियो काफी आगे था, बीबीसी का वो था। और यहाँ जो 7 देश हैं हमारे दक्षिण एशिया में
जी,
उनके बारे में चूंकि हमारे बहुत सारे छात्र, शोध छात्र इन अलग अलग देशों में अभी भी हैं और वहां से आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो हमारा अपना नेटवर्क है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है भारत के संदर्भ में, अब उसमें गलतियां हो सकती हैं, ये हो सकता है कि किसी भाषा के लिए हमने कहा कि अगर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हो सकता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड उतना अभी नहीं है, हो सकता है उसकी सीवियरिटी कम हो गई है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखा गया है कि 196 भाषाएं हैं
जी
जो भारत में जो इंडेंजर्ड है, जो कि द नेक्स्ट बेस्ट और नेक्स्ट वर्स्ट यूएसए के मुकाबले में उनकी 192 भाषाएं हैं जो कि इंडेंजर्ड। तो ये तो हम लोगों को पता ही था कि द बिगेस्ट ऑफेंडर सब दिन से कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये देश थे, लेकिन भारत में ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की, लेकिन हुआ है, नतीजा ये आया है कि इसमें इस तरह से स्थिति है।
लेकिन थोड़ा ये होता है कि अब यहाँ के बारे में तो कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी, तो इतनी समृद्धि है, इतनी विरासत है हमारी बोलियों की, भाषाओं की, बोलियों में भी अलग अलग एक्सेंट उसका, जो उनकी वैरायटीज है बोलने में,
हिंदी के 49 उपभाषाएं
जी, लेकिन उसमें जो मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर का रिपोर्ट आप लोगों ने सबमिट किया था, उसमें उत्तराखंड में ही गढ़वाली, कुमाऊनी और रोंगपो, इसको मिलाकर 10 बोलियों को उस लिस्ट में शामिल किया गया था जिन पर इस तरह का खतरा मंडरा रहा था।
जी, असल में नॉर्थ ईस्ट में एक जो पूरा एक पूरा बेल्ट है,
अच्छा,
कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए तो ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो कि इस खतरे में है। अब ये सवाल है कि इनमें से कितनी ऐसी भाषाएं हैं और भाषा के बोलने वाले हैं जो खुद को इससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसा उदाहरण और भी होंगे, कुछ लोग हैं जो कि अरुणाचल में भी हैं, आदि भाषा के भाषी हैं, जो इन्होंने अपना स्क्रिप्ट बनाया है ताणी लिपि और बहुत यत्न से अपनी भाषा को कंटिन्यूटी इसकी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इस तरह से जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ ओडिशा है, जहाँ जनजातीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है और उनके सबके अपनी अपनी बोलियां हैं। अरुणाचल का आपने जिक्र किया, अरुणाचल में भी इतने सारे जो जनजाति
अलग है,
हाँ, उनकी सबकी अपनी बोलियां अलग अलग है। संपर्क भाषा हिंदी जरूर है लेकिन वो अपने अपने समुदाय में अपनी बोली भाषा में बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे देखिये भीली, भिलाली, बारेली, पटेलिया, इस तरह की कई सारी बोलियां हैं जो जनजातीय समुदायों की हैं, ये भी उस लिस्ट में आप लोगों के उस एटलस में शामिल
सर। भीली के दो 12-13 वैरायटीज हैं, उसमें से कुछ वैरायटीज जो इसमें लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन भीली संप्रदाय की ओर से कोशिशें की जाती
हैं, अच्छा।
हमने, हमको याद है कि मैसूर में भी रहते हुए भीली के जितनी अलग अलग बोलियों के जो उत्साही लोग हैं कार्यकर्ता हैं, उनको ले आके हमने ट्रेन किया था कि किस तरह से अपनी भाषा को समृद्ध बनाएं और दोबारा लोगों की ज़बान पे चढ़ाएं।
पर मालवी तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक संख्या है बोलने वालों की रही है, लेकिन उसको
तो असल में ये जो ग्रेडेशन है इंडेंजर्ड का, ये 5-7 अलग अलग ग्रेड्स हैं, तो क्रिटिकली और बहुत सीवियरली इंडेंजर्ड नहीं है। कुछ लोगों की है जिस जहाँ की शुरुआत हुई है इरोजन, अगर आप क्या हाल है कि आपने मान लीजिए सेंसस 51, 61, 71, 81, 91, 2001 इस तरह से अगर आप मिला के देखें तो आप देखेंगे कुछ लैंग्वेजेस की जो परिधि है उसका जो डायमीटर है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कुछ लोग जो असल में इन बोलियों के बोलने वाले हैं वो सेंसस में बताते हैं कि नहीं अब हम कुछ और बोलते हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपनी शिफ्ट कर ली, दूसरी भाषाओं में बदल गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये डेंजर है, खतरा है, तो इसलिए खतरा माना जाता है।
लेकिन मान लीजिए छोटा ही समुदाय कोई है, क्योंकि हम आकाशवाणी में काम करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, देश में ये ऐसा कोई प्रसारण का नेटवर्क दुनिया में नहीं है जहाँ जो
176 भाषा में जी मातृभाषा में
और बहुत छोटा समुदाय भी अगर किसी क्षेत्र में है तो उसकी बोली में भी हम कार्यक्रम करते हैं। तो इस रूप में आकाशवाणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज भी है, उस बात को हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इनके लुप्त होने से, खत्म होने से किस तरह के खतरे हम महसूस कर सकते हैं उसको लेकर?
देखिए, एक तो ये है कि इनमें सब में मौखिक साहित्य ओरल लिटरेचर का एक बहुत बड़ा योगदान है और ये बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अब मान लीजिए कुछ चीजें जैसे राजा सलहेस, नयका बंजारा, दीना भद्री या मान लीजिए लोरिकायन,
तो ये अलग अलग
मिथिला के ये चीजें जो कि छोटे तबके के लोग ओरल लिटरेचर में गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, ये अगर बिल्कुल गायब हो जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी अपनी अपनी भाषाओं में ये तो ओरल टेक्स्ट हैं चले जाए। फिर मेडिसिन का लॉस, क्योंकि ये इंडिजिनस कम्युनिटीज जो है ये प्रकृति से दवा लेते हैं, इनकी अपनी आयुर्वेद है और इनकी अपनी जो है हीलिंग टेक्निक्स है, ये हम बिल्कुल खो देंगे, इनके चले जाते हैं। इन सब के अपने औजार हैं, अपने गहने हैं, अपना ड्रेस है, आभूषण है, अपनी पैटर्न्स हैं, अपनी तस्वीरें हैं, तो ये पेंटिंग्स इनकी चली जाएंगी। तो इसलिए संस्कृति का बहुत बड़ा हम समझते हैं जो विविधता हमारे देश में है, जो रिच वैरायटी है इंडिया में, उसको बहुत धक्का पहुंचेगा।
तो प्राचीन काल में जिस तरह से प्राकृत पाली जैसी भाषाएं रही हैं जो समय के साथ साथ हमारे व्यवहार में तो नहीं रही, लेकिन फिर मुझे लगता है कि उसमें इतना कुछ है, बाद में कोशिशें तो हुई हैं उनको ताकि उनको पढ़ा जा सके और उस ज्ञान को हम ले सके। देखिए, आकाशवाणी ने एक और बड़ी अच्छी कोशिश की है, संस्कार गीतों के संकलन को पूरे देश में जितने अलग अलग बोलियों भाषाओं में, संस्कार गीत एक बहुत बड़ी थाती है और हर जगह, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर समुदाय में ये चीजें व्यवहार में रही है दरअसल। और जितने भी संस्कार होते हैं बचपन से लेकर क्या गर्भधारण से लेकर मृत्यु या उसके उपरांत तक के, तो उनके संस्कार गीत हैं, उनका उसको ढूंढ ढूंढ कर निकालना, उसका संकलन, उसको प्रकाशन के रूप में उसको जनता तक या लोगों के सामने लाने का प्रयास, तो ये कोशिश तो आकाशवाणी की तरफ से हुई है संस्कार गीतों के रूप में। लेकिन और बहुत कुछ है जो उसको सहेजने की जरूरत है, और जिस तरह से लिपि को इस्तेमाल करते हुए हम ये कोशिश करें तो चीजें तो है, लेकिन मुझे लगता है कुछ अपनी मानसिकता
इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम,
कुछ मानसिकता, कुछ ये मान के कि सहज रहता है या इजी है इसमें लिखना या करना, क्योंकि अलग कोशिश करना आवश्यक है,
आवश्यक,
और वो कोशिश होगी तभी इसकी संभावना बनती है। और हाँ, तभी, और मुझे ये भी जरूरी लगता है डॉक्टर साहब की, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं, परिवार के स्तर पर भी तो होना चाहिए कोशिश
एकदम, क्योंकि अगर पिता माता डिसाइड करते हैं कि हमको केवल अमुक माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को, चाहे वो माध्यम जो भी हो, मातृभाषा माध्यम से नहीं पढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है।
क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है कि अगर आप अपनी बोली या भाषा में अगर जो कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि आपको 10वीं तक, 12वीं तक, जहां तक संभव हो, उससे आपके मानसिक विकास में बहुत मदद मिलती है और स्वाभाविक ग्रोथ होती है उसकी, एक ऐसा है,
क्योंकि भाषा तो एक माध्यम से है।
हाँ।
जो स्कूल में आप पढ़ेंगे वो तो आप भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, तो भाषा तो माध्यम है, उस माध्यम से जितने सहज रूप से आपको विषय का ज्ञान होता है,
हाँ।
अंग्रेजी के माध्यम से वो विषय का ज्ञान उतनी सहज रूप से नहीं हो सकता है।
अच्छा, एक चीज और भी होती है कि जब आप अपनी भाषा छोड़कर किसी दूसरी भाषा का सहारा लेते हैं अध्ययन में, पढ़ाई में, धीरे धीरे उसके साथ जुड़ जाते हैं, आप अपनी परंपरा, अपनी वैल्यू सिस्टम जो हर भाषा के साथ, बोली के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोली का अपना वैल्यू सिस्टम ना हो लेकिन जो विरासत है उसमें, साहित्य के रूप में, संगीत के रूप में, किसी भी पेंटिंग के रूप में, तो वो उससे तो आप अलग हो जाते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए जिसको रामचरित रामचरितमानस पढ़नी है अगर उसको हिंदी नहीं आती तो वो तो उसकी ट्रांसलेशन ही पड़ेगा। उसका जो एक मौलिक भाव है, उसकी
मौलिक भाव है, जो छंद है, जिसमें हाँ। गीत संगीत की जो एक
संभावना
है, संभावना है, वो सब तो उसको पता नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा, तो वो आप ज्ञान के तौर पर उसको अर्जित कर पाएंगे, पर मूल्य के तौर पर उसे अर्जित करना मुझे लगता है मुश्किल होगा उसको। जो भाषा की जो एक समृद्धि है देश की, भारत को तो इस पर गर्व है ही, क्योंकि मुझे लगता है और आपने तो बहुत अध्ययन किया है, इस रूप में हम अपने आप को कितने खुशी और कितना गर्व महसूस करें।
देखिए, भाषा का जो सम्मान भारत में है वो सम्मान सभी देश में है ऐसा नहीं है। लैंग्वेजेस डू मैटर टू अस, क्योंकि हम लोग हर भाषा में, प्रत्येक महान कवि जो है आप देखेंगे कि भाषा के ऊपर कविताएं उसकी है। किसी को भी ले लें तो आप देखेंगे हर कवि का बहुत बड़ा एक कॉर्पस है जो कि अपनी भाषा के बारे में है या मानव भाषा के बारे में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने जो देसिल बैना है विद्यापति के कथन में, सब्जन मिठा तो है ये, तो हम तो मानते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मान ली है लोगों ने, क्योंकि भाषा के माध्यम से जो और कुछ किया जा सकता है। कहा यह जाता है, सफीर वॉल्फ की एक हाइपोथेसिस है कि भाषा एक विंडो जैसा है जिसके माध्यम से आप बाहर की तरफ झांकते हैं, संस्कृति की तरफ देखते हैं। तो आपकी संस्कृति को देखने का जो जरिया है और जो चश्मा है, जो आईना है, जो वो भाषा ही है। तो इसलिए आप वैसे ही संस्कृति को जानेंगे जितना आपकी भाषा आपको दिखा सके।
गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी, पर संस्कृत पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। बाद में जब दक्षिण अफ्रीका में थे और अपने जीवन संग्राम में सक्रिय हो रहे थे और हो चुके थे बल्कि, उस समय उनको लगा कि अफसोस होता था उन्हें कि मैंने संस्कृत को उस समय क्यों नहीं ढंग से मैंने पढ़ाई की, क्योंकि तब वो गीता को लेकर बहुत ज्यादा आकर्षित थे और गीता के कंठस्थ करते थे, उसके सूत्रों को याद करते थे और सारे ग्रंथ पढ़ना चाहते थे वो, तो संस्कृत का ज्ञान जो है उन्हें नहीं हो पाया था इसी वजह से। लेकिन बाद में उन्होंने देखिए उर्दू सीखी, तमिल भाषा अच्छी तरह से सीखी उन्होंने, और भारत आए तो उन्होंने यहाँ की भाषाओं में ही अपना सारा संवाद जनता के साथ किया। तो ये अगर ये भी तो जरूरी है कि जब हम आम लोगों के साथ संवाद या जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसमें भी भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र की या उस समुदाय के लोगों की भाषा जिसमें हम कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक गीत हम इस मौके पर श्रोताओं को सुनवा देते हैं। ये गीत है मिशन कश्मीर फिल्म का, डॉक्टर साहब, और रिंद पोषमाल कश्मीरी भाषा का एक बड़ा सुंदर सा शब्द इसमें महसूस, आप उस फ्लेवर को महसूस कर पाएंगे, उसकी खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे, और इस बहाने इस गीत को सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं बातचीत को अपने अंतिम पड़ाव पर हम आगे लेकर चलेंगे।
हिट द बम्पर।
संगीत में है ऐसी फुहार, पतझड़ में बीजों लाए बहार, संगीत को ना रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार। संगीत में है ऐसी फुहार, पतझड़ में बीज लाए बहार, संगीत को ना रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार।
कार्यक्रम श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम अपनी देशज भाषाओं यानी भारत में इतने जो बड़ी संख्या में भाषाएं और बोलियां हम प्रयोग में लाते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में मन की बात में जिक्र किया था और ये चर्चा आज हम प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी से कर रहे हैं जो प्रख्यात भाषाविद हैं और भाषा के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लेखन से जुड़े हुए कार्य, आपके तो काव्य संग्रह भी प्रकाशित कई सारे हुए हैं, मैथिली में हुए हैं, नाटक भी आपने लिखे हैं मैथिली में
जी, बंगला में भी है,
बंगला में भी है। इतनी सारी भाषाएं आपने पढ़ते हुए मतलब आपको असुविधा है, कोई परेशानी नहीं? हमारा मन करता है पढ़ने का पर उतना लगता है कि पढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं,
असल में जो बहुभाषी लेखक है,
हाँ,
अब भारत में ऐसे लेखक बहुत हैं, ये नहीं कि नहीं है। आप नागार्जुन जी को लेके देखें,
अच्छा,
यात्री के नाम से वो मैथिली में लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे नागार्जुन के नाम से। राजकमल चौधरी को ले लें या रेणु जी को ले लें जो कि मैथिली भाषी थे लेकिन हिंदी में लिखते थे, तो ये कॉमन बात है, आम बात है। निराला जी बंगला का उतना ही ज्ञान रखते थे जितना हिंदी का, तो ये आम बात है। लेकिन यह है कि बहुत सारी टेक्स्ट ऐसी हैं जो बंगला में ही लिखना संभव है, तो इसलिए वो बंगला में ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे लिए।
अच्छा, एक ये भी तो है भाषा की खूबसूरती डॉट साहब की, जो उसके लोकोक्तियां मुहावरे हैं। अब आप उस तरह की बात मान लीजिए बांग्ला में जो है कोई मुहावरा है, अब उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करके अगर करेंगे तो उसका असर नहीं होगा या खूबसूरती खत्म हो जाती, अंग्रेजी में करेंगे तो भी खत्म होनी, तो वो भी हमारे, मुझे लगता है कि अगर भाषा पर कहीं आ जाती है तो वो चीजें भी हमारे हाथ से छूटती चली जाती
है। आपको करेस्पोंडिंग मुहावरा अगर आपको मिल जाता है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, अब आप इसका अनुवाद तो बिल्कुल उस तरह से कर नहीं पाएंगे, तो आपको कहना पड़ेगा अधजल गगरी छलकत जाए, तो तब आप कहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो है।
अच्छा, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भाषा या बोलियों को ये सपोर्ट कर रही है या इसकी वजह से भी कहीं कुछ है, उस पे आंचा रही?
बहुत चैलेंजिंग काम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP में हो रहा है।
अच्छा,
और बहुत सारी कंपनियां हैं, संस्थाएं तो है ही, IITs हैं, CDAC है, वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भी गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी कंपनियां, लायन ब्रिज, हैप्टिक, वेरना, इतनी सारी कंपनियां सब काम कर रही हैं जो भाषाई सॉफ्टवेयर उसके ऊपर में, खासतौर से ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन के ऊपर में। क्योंकि अब देखा ये जाएगा कि 2026 तक 650 मिलियन लोग हिंदी और भारतीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट के ऊपर में।
अच्छा,
कंपेयर टू अंग्रेजी भारत में जो कि केवल 200 मिलियन में रह जाएंगे, अटक जाएंगे। तो ये KPMG का सर्वे का रिपोर्ट, तो इसका मतलब यही है कि अब भारतीय भाषाओं में इंटरनेट अंतरजाल में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां आके इसमें काम कर रही है।
पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो IT मिनिस्ट्री है, मंत्री महोदय ने खुद इस बात को सुनिश्चित करने का आदेश दिया था, जो मोबाइल कंपनियां मोबाइल बना रही हैं उसमें इस तरह का सॉफ्टवेयर वो जरूर डालें जिससे हमारी जो अपनी स्थानीय भाषाएं हैं भारत की, अलग अलग भाषाएं, उसमें काम करने में या ज्ञान प्राप्त करने में या अभिव्यक्ति में जो भी है उसको सुविधा प्राप्त हो सके।
ये तो उन्होंने कहा ही है। इसके अलावा,
हाँ,
अभी ICANN की ओर से, ICANN मतलब इंटरनेट गवर्निंग अथॉरिटी दुनिया भर में जो है, तो उसके तरफ से भी भारतीय लिपियों को जैसे ई कॉमर्स के लिए खास तौर से वो चाहे बढ़ावा मिले, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा काम, एक पहल बहुत बड़ी उठाई कि एक न्यू ब्राह्मी जनरेशन पैनल एक बनाया है, तो मैं उसका को चेयर हूँ।
अच्छा,
दो और हमारे साथ साथी हैं, एक CDAC से हैं, एक प्राइवेट इंडस्ट्री से हैं। तो इन्होंने अभी जो हमारे 22 भारतीय भाषा है उनकी जो लिपियां हैं, अधिकांश लिपि के ऊपर में ICANN के जरिए में बहुत बड़ा काम कर लिया है पिछले 3 साल में, तो अब उसका नतीजा, उसका फायदा हमको मिलेगा
किस रूप में?
ये जो मान लीजिए अभी तक हम जो कुछ करते हैं, चाहे हिंदी में भी किसी कंपनी का आप नामकरण करना चाहेंगे,
अच्छा,
आपको नाम तो लिपि अंग्रेजी का ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अब हिंदी की देवनागरी लिपि या बंगला या तमिल या कन्नड़ लिपि में भी आप बिल्कुल उस लेबल का नाम दे पाएंगे। तो इसलिए इंटरनेट गवर्निंग अथॉरिटी विल नाउ बी अलाउइंग ऑल द इंडियन स्क्रिप्ट्स टू कम इन अ वेरी बिग वे फॉर ई कॉमर्स।
अच्छा, तो सिर्फ अंग्रेजी में ही नाम हो ये जरूरी नहीं है, किसी में भी हो सकता है?
अभी तो इस समय तो ये है कि चाइनीज में हो सकता है, फ्रेंच में हो सकता है, जो रोमन लिपि में हो सकता है, लेकिन भारतीय लिपि में
नहीं है।
ये जो LGR बोलते हैं, लेबल जनरेशन रूल्स नहीं है।
अच्छा,
तो अब ये नया दौर शुरू होगा कि ये सब एक्सेप्टेड हो गए हैं, तो अब ये नए सिरे से ही आएगा। तो जो डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया, 200 लोगों ने हमारे साथ काम किया।
अच्छा, एक चीज बताएं कि भाषाओं में जो भारतीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका आपस में जो संबंध है वो किस तरह का है, थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में, क्योंकि आपने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिम भारत, हर क्षेत्र में आपने काम किया है, हर तरह की भाषा बोली से आप जुड़े रहे हैं।
मूलतः चार तरह की भाषा, चार कैटेगरीज की भाषा या फैमिलीज की भाषा हमारे भारत में बोली जाती है मूलतः। दो और अतिरिक्त फैमिली भी है, लेकिन इंडो एरियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रेशियाटिक और टिबेटो बर्मन, तो ये चार अलग अलग हैं, और चारों की अपनी अपनी बहुत जगह है, अहमियत है। ऐसा नहीं कि जो नॉर्थ ईस्ट में टिबेटो बर्मन बोली जाती है उसकी अपनी जगह नहीं है, क्योंकि सुमति कुमार चटर्जी ने तो किरात जनकृति नाम से उनके ऊपर बहुत बड़ी किताब भी लिखी थी। तो इनके आपस में स्ट्रक्चरली, संरचना की दृष्टि से, अन्वय की दृष्टि से बहुत फर्क है, लेकिन हजारों साल से एक देश में एक भौगोलिक स्थान पे रहने की वजह से इनमें बहुत तालमेल भी हुआ है, बहुत
आदान
प्रदान भी हुआ है। इसके लिए बहुत सिमिलरिटीज भी, जो नेचुरल रूप से अनेकता में एकता आ गई है, तो इसके ऊपर में बहुत अच्छी चीजें आई हैं। खासतौर से मरेबी एमेनो ने इंडिया एज ए लिंग्विस्टिक एरिया एक कॉन्सेप्ट दिया है।
अच्छा।
कि किस तरह से इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए लिंग्विस्टिक एरिया, हालांकि ये अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग श्रेणी की भाषाएं हैं, पास से ही आ रहा है भारत में।
जी, तो इस बात पर गर्व महसूस होना चाहिए, चाहे कोई भी बोली हो, छोटे से छोटे समुदाय में बोली जाती हो, लेकिन उसकी अहमियत किसी भी बड़ी भाषा से, तथाकथित बड़ी भाषा से कम नहीं है, और इसलिए हम जिस भाषा बोली को भी हम अपनाते हैं, अपना कर रखना चाहिए दरअसल उसे, और थोड़े आजकल एक्स्ट्रा कोशिश करनी चाहिए, अतिरिक्त कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी चुनौतियां हैं तो उसमें हमारी कोशिश भी ज्यादा होनी चाहिए, उनको सहेजने का, उनको बचाने का, अपने बच्चों को प्रेरित करने का कि वो हमारी बोली भाषा भी सीखें, औरों को भी सीखें, क्योंकि जितनी ज्यादा, और आपसे तो बहुत प्रेरणा मिल रही है कि हमें बहुभाषी होना ही चाहिए, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा बोली के अलावा दूसरे प्रदेशों की भाषाओं को, बोलियों को सीखें, क्योंकि हमारी अपनी ही संस्कृति के अलग अलग स्वरूप हैं इसमें। आज इस बातचीत में श्रोताओं, प्रोफेसर डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी, जो कि वर्तमान में MIT सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक स्टडीज गुरुग्राम में प्रोफेसर और हेड हैं, प्रख्यात भाषाविद हैं, बहुत कुछ इस क्षेत्र में उनका योगदान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषाओं को लेकर, और खासतौर पर भारत में जो भाषाई परिदृश्य है, उसकी समृद्धि है, उस पर हमने चर्चा की। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत आभार आपका इस बातचीत के लिए।
धन्यवाद, नमस्कार।
और अंत में एक गीत उसी तरह का जो पहले भी आपको हमने इस कार्यक्रम में सुनवाया है, भाषाओं के, यानी भारतीय भाषाओं के अलग अलग रंगों को समेटे हुए। सुमंत एक गायक है, काफी लोकप्रिय गायक है, और उन्होंने तुम ही हो एक गीत है, बहुत ही लोकप्रिय गीत है, लेकिन आप सुनिए कि 10 अलग अलग भाषाओं में इस गीत का आनंद किस रूप में लिया जा सकता है। इसी आनंद और इसी खुशी और इसी कामना के साथ आपको छोड़े जाता हूं इस कार्यक्रम से, कि हम सब अपनी भाषा बोलियों के प्रति स्नेह भी रखें, सम्मान भी रखें, और उन्हें सहेजने की कोशिश करें। जैनेन्द्र को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तू ही जे अमार जीवनेर ध्रुव तारा, बाचबो ना किछु तई टोके छाड़ा, यदि कोनो दिनो बाहर आई टोके, हारबो आमी अमार निजेके।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे।
पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह।
पोस्ट बॉक्स नंबर 111।